नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्य समाचार। राजस्थान के कोटा में 1500 करोड़ रुपए की लागत की ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिलीगुड़ी दौरे में प्रोटोकॉल का पालन न करने पर पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और सम्मेलन का स्थान अचानक बदलने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की। तेलंगाना में 130 माओवादियों ने अत्याधुनिक हथियारों के भारी जखीरे के साथ आत्मसमर्पण किया। SBI ने महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से 50 करोड़ डॉलर के सिंडिकेटेड सामाजिक सावधि ऋण की घोषणा की। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाल में आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए वहां की जनता और सरकार को बधाई दी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, पड़ोसी देशों को अब निशाना नहीं बनाया जाएगा जब तक कि वहां से कोई हमला ना हो। और बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन और कनाडा के विक्टर लाई के बीच सेमीफाइनल मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्षेत्र में हवाई संपर्क से तेज और व्यापक विकास होता है। आज नए कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के शिलान्यास समारोह में एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले भारत में लगभग 70 हवाई अड्डे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 160 से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के आसपास कई हवाई अड्डों का विकास हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डों के निर्माण से छोटे शहरों में उद्यमशीलता और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता है और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है। उन्होंने कहा कि कोटा हवाई अड्डा क्षेत्र के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा।
कोटा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर मिल रहा है। राजस्थान में विकास के कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि कोटा के प्रमुख रेलवे स्टेशन को नई सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
कोटा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से चारों तरफ जुड़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेष रूप से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए यह क्षेत्र एक बड़ा केंद्र बनेगा।
इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा में कई दशकों से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की मांग थी और अब ये सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोटा में पहले से ही मजबूत सड़क और रेल संपर्क के साथ साथ पर्याप्त बिजली तथा जल संसाधन मौजूद हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार अपने वादों को तेजी से पूरा कर रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे की परियोजना 2 साल के भीतर पूरी हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल दौरे पर सिलीगुड़ी में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल आदिवासी सम्मेलन में राज्य सरकार द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि राज्य सरकार ने सम्मेलन के लिए उचित स्थान भी उपलब्ध नहीं कराया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और सिलीगुड़ी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन का स्थान अचानक बदलने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। और राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए राज्य सरकार का प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और इस पद की पवित्रता का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं आदिवासी समुदाय से हैं और उन्होंने जो दर्द और पीड़ा व्यक्त की है उससे देशवासियों को बहुत दुख पहुंचा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में राष्ट्रपति ने कहा कि संथाली संस्कृति और परंपराएं प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए हर संभव उपाय किए हैं। इनमें सांस्कृतिक परंपराओं और भाषाओं का उत्थान शामिल है।
मुझे गर्व है, मैं सांताली समुदाय में जन्मी भारत माता की बेटी हूँ। सांताल समुदाय के लोगों की परंपराओं और सामूहिक चेतना के संरक्षण और संवर्धन में इंटरनेशनल सांताल काउंसिल, ऑल इंडिया सांताली एसोसिएशन तथा आदिवासी समाज से जुड़े सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश भर में अतिक्रमण और घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। उन्होंने ये बात हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। श्री शाह ने कहा कि उत्तराखंड संघर्ष के दौर से निकल चुका है और विकास की ओर अग्रसर है।
मुख्यमंत्री जामी जी ने एक एक समस्या को चून चून कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दुनी राज 4 गुनी गति से आगे बढ़ रहा।
इस अवसर पर श्री शाह ने राज्य के लिए 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए लोगों को नागरिकता दी जानी चाहिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत के उत्थान का आकलन उसकी शक्ति के आधार पर किया जाएगा, न कि दूसरे देशों की गलतियों के आधार पर। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में हिंद महासागर का भविष्य विषय पर उन्होंने कहा कि भारत के अभ्युदय की दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और इसे रोका नहीं जा सकता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने किसी भी व्यापार समझौते में हितधारकों की संवेदनशीलता से समझौता नहीं किया है। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 के तीसरे और अंतिम दिन श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने सभी व्यापार समझौतों में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है और इससे व्यापक सहयोग के द्वार खुले हैं। रायसीना डायलॉग के बारे में श्री गोयल ने कहा कि ये मंच भारत को गौरवान्वित कर रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान स्थापित कर रहा है।
रायसीना डायलॉग मेक्स इंडिया प्राउड।
रायसीना संवाद भारत के लिए गौरव की बात है। इस संवाद ने वैश्विक मंच पर एक अनिवार्य आयोजन के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर ली है, जिसमें भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय भागीदारी देखने को मिली है। भारत को विश्व के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमें भारत में इस तरह के और अधिक आयोजनों की आवश्यकता है। ये आयोजन विश्वास और मित्रता को और मजबूत करेगा।
एंगेजमेंट्स हेल्प बिल्ड ब्रिजेस ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद में आज एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र में 130 माओवादियों ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के समक्ष समर्पण कर दिया। समर्पण करने वाले माओवादियों ने 124 अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा भी सौंपा। इनमें हल्की मशीन गन, 31 AK-47, 21 राइफल और 20 सेल्फ लोडिंग राइफल शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 130 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद बचे हुए माओवादी नेताओं से मुख्यधारा में लौटने की अपील की। उन्होंने बुलेट से शक्तिशाली बैलेट पर जोर देते हुए कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए वित्तीय पैकेज, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और पुराने मामलों की समीक्षा के लिए समिति बनाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण संवाद और लोकतांत्रिक तरीके ही राज्य के पुनर्निर्माण का सही मार्ग। श्रीनिवास मांकाली हैदराबाद से आकाशवाणी के लिए।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों विशेषकर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं समाज और राष्ट्र की नींव हैं। वहीं भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 50 करोड़ डॉलर के सिंडिकेटेड सामाजिक सावधि ऋण की घोषणा की है। ये सुविधा विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इसमें ग्रीन शू विकल्प भी उपलब्ध है। SBI के अनुसार ये सिंडिकेटेड लेन देन महिला सशक्तिकरण के लिए SBI और वैश्विक पर्यावरण सामाजिक और शासन वित्त पोषण परिदृश्य के लिए एक मील का पत्थर है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानून हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालिन्द्र शाह झापा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 से प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने गए हैं। श्री बालिन्द्र शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री और CPN-UML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली को बड़े अंतर से हराकर चुनाव जीत लिया है। हमारी काठमांडू संवाददाता ने बताया है कि कुल 1,63,379 मतदाताओं में से 1,06,568 मतदाताओं ने 5 मार्च को हुए चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
165 निर्वाचन क्षेत्रों में से अब तक 85 निर्वाचन क्षेत्रों के अंतिम परिणाम घोषित किए गए हैं। इस बीच बाकी जगहों पर वोटों की गिनती जारी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत 72 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है और 49 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। नेपाली कांग्रेस ने 10 सीटें जीती हैं और अन्य 11 निर्वाचन क्षेत्रों में वो आगे है। UML के पास 8 सीटें हैं और 3 पर वो आगे चल रही है। NCP ने 4 सीटें जीती है और 3 पर वो आगे चल रही है। RPP ने 1 सीट जीती है और श्रम संस्कृति पार्टी 3 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है।
ईरान की राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि पड़ोसी देशों को अब निशाना नहीं बनाया जाएगा, बशर्ते हमला वहीं से ना किया जाए। श्री पेजेश्कियन ने हाल के दिनों में हुए हमलों के लिए पड़ोसी देशों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों पर हमले सैन्य बलों के बीच गलत संचार के कारण हुए। उन्होंने कहा कि अमेरिका की बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग एक सपना मात्र है। सऊदी अरब ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो इस तरह की भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दे। इस बीच पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के 8वें दिन भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी दिल्ली मेट्रो के 2 नए गलियारों का भी उद्घाटन करेंगे। लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में आज लक्ष्य ने कनाडा के विक्टर लाई को 21-16, 18-21, 21-15 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान के कोटा में 1,500 करोड़ रुपए की लागत की ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिलीगुड़ी दौरे में प्रोटोकॉल का पालन न करने पर पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और सम्मेलन का स्थान अचानक बदलने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा पड़ोसी देशों को अब निशाना नहीं बनाया जाएगा जब तक कि वहां से कोई हमला ना हो। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।